तारीख 1 दिसंबर दिन रविवार। नमस्कार भारत के साथ मैं हूं मानसी दास। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ने साबित किया बहुमत, बीजेपी ने किया वॉकआउट।
लेकिन आपने भी तो यही किया था 2014 में ही, यू नो, आई मीन तब भी वॉइस वोट नहीं हुआ था एनसीपी का।
बिगड़ रही है अर्थव्यवस्था की तबीयत, क्या काम नहीं कर रहे सरकार के उठाए कदम?
खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देने का इंतजाम हमने नहीं किया है, वो यदि कर दें तो स्थिति काफी बेहतर हो सकती है।
हैदराबाद रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग हुई तेज।
महिलाओं की ना दिन पर दिन ये वारदातें बढ़ती जा रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। महिलाएं आखिर कब तक डरकर रहेंगी, कब तक मोमबत्तियां की लौ जलती रहेंगी?
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। सेंट्रल लंदन के लंदन ब्रिज पर हुई छुरीबाजी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस की गोली से हमलावर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हमलावर की पहचान उस्मान खान के तौर पर हुई है, जबकि मारे गए 2 आम लोगों में से एक शख्स जेल में सजा काट रहे लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर भी उनकी ट्रेनिंग में हिस्सा ले चुका था। जैक मैरिट ने लॉ और क्रिमिनोलॉजी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। इसके साथ ही वो कैदियों के पुनर्वास के लिए भी काम करते थे। उनकी हत्या करने वाले उस्मान खान एक सजा याफ्ता आतंकी थे, जो कुछ वक्त पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इस हमले को अंजाम देने से पहले वो जैक की ट्रेनिंग का हिस्सा भी रह चुके थे। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि खान को रिहा करने से पहले उन पर लगे तमाम प्रतिबंधों का अनुपालन किया गया था। ब्रिटेन में शुक्रवार की दोपहर को हुए इस हमले ने कैदियों को जल्दी छोड़ने के मसले पर विवाद पैदा कर दिया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वो इस हमले को अंजाम देने के लिए ही बाहर आए थे। हालांकि इस हमले के दौरान जिस तरह ब्रिटेन के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, उसकी तारीफ हो रही है। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले हमलावर को निशस्त्र करने वाले एक शख्स थॉमस ग्रे का कहना है,
भले ही मैं आने वाले वक्त में इस घटना के बारे में भूल जाऊं या इसकी याद धुंधली हो जाए, लेकिन जिस तरह लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जिस तरह से लोगों ने आगे आकर मदद की, उसके लिए मैं चाहे जितना भी धन्यवाद कहूं वो काफ़ी नहीं होगा। ये थे थॉमस ग्रे के शब्द। इसके साथ ही हॉलैंड के शहर द हेग के डिपार्टमेंटल स्टोर में चाकू से हमला करने वाले शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार को हुए इस हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी जर्मनी में सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कोयले के कई खुली खदानों पर घंटों तक कब्जा रखा। उनकी मांग थी कि कोयले के इन खदानों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। एक और जहां सरकार पहले ही ये वादा कर चुकी है कि 20 साल बाद वे कोयले के उत्खनन को पूरी तरह बंद कर देगी, वहीं कार्यकर्ताओं की मांग है कि इन खानों को जल्द से जल्द लेकर कोई फैसला लिया जाए। पुलिस का कहना है कि एक साइट ने इन कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश में तीन अधिकारी घायल भी हुए। हालांकि जर्मनी के सैक्सोनी और ब्रैंडनबर्ग में हजारों नौकरियां इन खानों पर ही निर्भर हैं। हर साल यहां से करीब 20 मिलियन टन से अधिक लिग्नाइट का उत्पादन होता है। इस प्रदर्शन का संचालन करने वाले समूह के प्रवक्ता नाइक मालहौस ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे और भी प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हम यहाँ दोबारा लौट कर आएंगे और तब तक आएंगे जब तक यहाँ खुदाई होती रहेगी। हमने आज ये बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। हमने ये दिखा दिया है कि उत्खनन को कैसे रोका जा सकता है। नाइक मालहौस के शब्द। ईसाइयों के ईश्वर ईसा मसीह से संबंधित एक पवित्र लकड़ी 1000 साल बाद रोम से बेतलहम वापस लाई गई है। इस लकड़ी के टुकड़े के संबंध में मशहूर है कि ये ईसा मसीह के चरवाहों के समूह से संबंधित है। इस लकड़ी के टुकड़े को सेंट कैथरीन चर्च में रखा गया है, जो कि चर्च ऑफ नेटिविटी के पास है। ऐसी मान्यता है कि इसी चर्च में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पोप फ्रांसिस के आदेश के बाद अंगूठे के आकार जितने बड़े इस लकड़ी के टुकड़े को बेतलहम लाया गया है। नामीबिया के निर्वाचन आयोग का कहना है कि राष्ट्रपति हेज गिंगोब आगामी कार्यकाल के लिए भी चुन लिए गए हैं। गिंगोब ने सोशल मीडिया के माध्यम से नामीबिया के लोगों को धन्यवाद कहा, साथ ही उन्होंने नामीबिया में सुधार लाने का वादा भी किया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कल विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन वाली इस सरकार के पक्ष में कुल 169 वोट पड़े, लेकिन विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले विपक्षी बीजेपी ने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सदन से वॉकआउट किया। प्रोटेम स्पीकर को चुनने को लेकर भी बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सरकार को चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि भीतर से भी है। सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
बीजेपी ने महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर विधानसभा की पूरी कार्यवाही को असंवैधानिक बता दिया। दरअसल सदन के नए स्पीकर से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ। इस बार कालिदास कोलंबर को हटाकर दिलीप वलसे पाटिल को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा,
सभागृह में मनमानी करनी थी, इसलिए प्रोटेम स्पीकर को हटाकर संविधान को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई यहाँ पर की गई, इसका भी हमने निषेध किया है।
वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी को पहले ही पता चल गया था कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए उन्होंने वॉकआउट कर दिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इसे बीजेपी का मैदान छोड़ना बताया।
कहीं ना कहीं उनका जो असली चेहरा था वो सामने आने वाला था, आंकड़े जो वे दावे कर रहे थे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैदान छोड़कर वे भाग गए, ये सच्चाई।
क्या महाराष्ट्र की विधानसभा में असंवैधानिक तरीके से फ्लोर टेस्ट किया गया और बीजेपी के इन आरोपों में कितना दम है? इस पर वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन कहती हैं कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब वो भी इसी तरह सदन में वोटिंग करवाती थी।
वॉकआउट क्यों करते हैं? क्योंकि आप अग्री नहीं करते हो ना किसी के पॉलिसी से या किसी के स्टेटमेंट से। लेकिन आपने भी तो यही किया था 2014 में, यू नो आई मीन तब भी वॉइस वोट से हुआ था एनसीपी का। हम लोग सभी कह रहे थे कि किसको पता पड़ेगा कि कितने लोगों ने वोट किया, हमको मालूम होना चाहिए, डिविजन होना चाहिए था। पर उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने डिविजन नहीं कराया, वॉइस वोट से किया था।
बीजेपी इस मुद्दे को अदालत तक ले जाने की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती सिर्फ विपक्षी खेमे से ही नहीं है, बल्कि उनका समर्थन करने वाले एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी तालमेल बेहतर नहीं दिख रहा है। इन दोनों ही दलों के बीच उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग तेज होती दिख रही है। इस मामले में सुजाता आनंदन कहती हैं कि असल लड़ाई बड़े विभागों को अपनी तरफ करने की चल रही है।
होम डिपार्टमेंट, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये तीन तो मेजर डिपार्टमेंट्स है दोनों कांग्रेस और एनसीपी को। रेवेन्यू के लिए भी हो सकता है, रेवेन्यू इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। ये तीन चार डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर भी, और अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी झगड़े होते हैं इनके ऊपर।
कुल मिलाकर कहें तो जितनी रस्साकशी के बाद महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ, शायद उससे कई ज्यादा मेहनत अब सरकार को चलाने और तीनों पार्टियों को एक साथ तालमेल बैठाने में भी करनी पड़ेगी। वहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा कि 105 विधायकों वाले मजबूत विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार के सामने कैसी कैसी मुश्किलें खड़ी करती है।
महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ने साबित किया बहुमत, रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। अब बात झारखंड की, जहां कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान हुआ वो सभी सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं। बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने ही रांची में मौजूद हमारे सहयोगी रवि प्रकाश से संपर्क किया और पूछा कि इन सभी सीटों पर मतदान कितना हुआ और क्या कहीं कुछ हिंसा भी हुई।
पहले चरण में 62.87%, मतलब आप इसको कह सकते हैं 63% मतदान हुआ है। 7 बजे से 3 बजे तक ही मतदान होना था, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, 3 बजे वोटिंग रोक दी जानी थी, तो लोगों ने क्या किया कि सुबह सुबह लाइन लगा दी। ऐसे हम लोग 7 बजे घूम रहे थे लोहरदगा इलाके में, तो लोगों की लाइन लग चुकी थी और लोग वो अपना वोट दे रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोग जो भीड़ थी वो कम होती गई, मतलब वोटिंग ज्यादा हुई है पहले हाफ में, कम हुई है सेकेंड हाफ जी।
और क्या कोई जानकारी है कि पिछली बार कुल मतदान कितना था, उससे ये पहले चरण का मतदान ज्यादा है कम है?
5 चरणों में वोटिंग हुई थी 2014 के चुनाव में, ऑलमोस्ट यही रहा था, मतलब 60-65% के बीच का ये प्रतिशत था अलग अलग चरणों में। तो उस हिसाब से न तो बढ़ा है बहुत ज्यादा और न घटा है।
क्या कहीं पर कोई हिंसा भी देखने को मिली या लगभग शांतिपूर्ण रहा सब जगह चुनाव?
कुछ जगहों पे कुछ झड़पें भी हुई, जैसे डाल्टनगंज सीट है पलामू प्रमंडल में, कोसियारा है गांव है, वहां के बूथ पर क्या हुआ, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो पहले मंत्री भी रहे हैं केएन त्रिपाठी जी और जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके दोनों के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और ऐसा आरोप लगा कि केएन त्रिपाठी जी ने अपने हाथ में पिस्टल निकाल लिया, उनके बॉडीगार्ड्स ने भी लोगों की तरफ हथियार ताने, तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया कुछ देर के लिए, लेकिन उन्होंने उन्हें फिर छोड़ दिया गया बॉन्ड बनवाकर। तो एक तो ये घटना हुई। दूसरी घटना जो है वो हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां पर जो एनसीपी है नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं कमलेश सिंह, वो भी मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार में पहले, उनके समर्थकों में और जो वहां के वर्तमान विधायक हैं बसपा से चुने गए थे पिछली बार कुशवाहा सिंह गुर्जर मेहता, इस बार वो आजसू पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो सुदेश महतो की पार्टी है, तो इन दोनों के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, वहां भी रोड़ेबाजी हुई। एक नक्सली वारदात हुई गुमला जिले में, तो गुमला में जो विसुनपुर का इलाका है वहां से एक कठठोलवा गांव है, विसुनपुर से कठठोलवा गांव जाने के रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज है, सिंगल सड़क है, उस सड़क में एक छोटा सा पुल था, उस पुल को नक्सलियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। उसके बाद पुलिस वाले लोग वहां गए और फिर उसको सांत्वन कराया। तो ये कुछ घटनाएं हुई है, बाकी मतदान शांतिपूर्ण रहा।
जानकारी दे रहे थे रवि प्रकाश। इसी सप्ताह भारत ने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के नए आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार खराब दौर से गुजर रही है। मौजूदा तिमाही में जीडीपी 4.5% तक पहुंच गई, जो पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। इस साल जुलाई में बजट पेश करने के बाद से सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए और ये कदम कितने कारगर साबित हुए, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने संपर्क किया आर्थिक मामलों के जानकार शिशिर सिन्हा से।
इस दरमियान आप देखेंगे कि 30 से भी ज्यादा ऐसे कदम उठाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है वो ये हुई है जो 20 सितंबर को कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई, और कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी की गई उसमें दो स्तर है, एक तो जो 22% जो सभी कंपनियों के लिए था और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए 15% की नई दरों की बात की गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या उस नए कटौती का अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ कि नहीं, अभी तक की जो स्थिति है कि उसकी वजह से नया निवेश आया हो ऐसा कुछ दिख नहीं, और उसकी वजह भी है, जब भी कोई ऐसे फैसले होते हैं तो उसका असर देखने में 2 महीने 3 महीने या कई बार तो होता है कि 6-6 महीने तक का वक्त लग जाता है। दूसरा, अगर आप शेयर बाजार में देखें तो आपको याद होगा कि बजट में जो लॉन्ग सुपर सरचार्ज जो बढ़ाया गया था उसकी वजह से शेयर बाजार पे बहुत बुरा असर पड़ा, बाद में वो कदम वापस ले लिया गया लेकिन शेयर बाजार उसके बाद उस स्थिति से बहुत जल्दी नहीं उभर पाया, और अब जो स्थिति आपकी शेयर बाजार में आप देख रहे हैं उसमें ज्यादा बड़ी वजह ग्लोबल फैक्टर है डोमेस्टिक फैक्टर के बजाय।
आपने एक बात ये भी बताई कि कई ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो अर्थव्यवस्था पे असर डाल रहे हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं?
सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिका और जो चीन के बीच जो व्यापार युद्ध की स्थिति है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रखा है। दूसरा क्या है कि दुनिया के तमाम देशों में, चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो सुस्त पड़ी हुई है, कुछ देशों में मंदी की स्थिति बन गई है। तो हम जो सामान बनाते हैं वो सामान बाहर के बाजार में बिकेगा तभी तो हमारी कमाई होगी, हमारे ऊपर तो दोहरी मार है, घरेलू बाजार में भी हमारा माल नहीं बिक रहा है, विदेशी बाजार में माल खरीदने वाले नहीं है क्योंकि उनकी स्थिति खराब है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक प्रभावित किया है।
क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ नीतिगत गलतियां भी हुई हैं अर्थव्यवस्था को लेके?
जहां तक नीतियों की बात है, देखिए अभी तक हमने क्या किया है, हमने निवेश बढ़ाने के उपाय किए हैं, साथ साथ ये भी जरूरत है कि खपत कैसे बढ़ाया जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो निवेश और खपत दोनों पे चलती है। तो निवेश अगर आप बढ़ा देते हैं खपत पे नहीं बढ़ाते हैं तो उसका असर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि चाहे वो बजट की बात हो या बजट के बाद की बात हो, और खासतौर से 20 सितंबर को जब कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन किया गया वो एक बड़ा कदम निवेश बढ़ाने के लिए था। खपत बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? इनकम टैक्स में कमी। इनकम टैक्स में कमी करेंगे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, वो ज्यादा पैसे जो आएंगे और अगर आप उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी सुरक्षित है, वो आपका खपत करना शुरू करेंगे। खपत करेंगे तो उद्योग जगत भी निवेश करने के लिए उत्साहित होगा क्योंकि उसको ज्यादा सामान बनाना होगा। मुझे लगता है कि जो पूरी व्यवस्था में हमने एक जो कमी कह सकते हैं वो ये देखी है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देने का इंतजाम हमने नहीं किया है, वो यदि कर दें तो स्थिति काफी बेहतर हो सकती है।
सरकार को तलाशने होंगे निवेश बढ़ाने के साथ साथ खपत बढ़ाने के तरीके, विश्लेषण कर रहे थे शिशिर सिन्हा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर हुए यौन उत्पीड़न और फिर उनका जला हुआ शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा उबल पड़ा है। कल इसकी गूंज राजधानी दिल्ली में सुनाई दी, जहां कई लोग सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग की।
क्या देश के अंदर महिला के खिलाफ आवाज उठेगी तो क्या आवाज उठा सकता है? जब लोकसभा का सत्र चल रहा है, चिन्मयानंद को ये लोग सेफ रखते हैं, उन्नाव में कछुआ में रेप केस होता है, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आज संसद का सत्र चल रहा है, हम लोग सड़कों पर उतरे हैं आवाज उठाने के लिए और इस सरकार से जवाब मांगने के लिए। संसद में ये लोग अपनी कुछ बात नहीं है। आज सब तेलुगु स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आके जुड़े हैं अपनी बात आगे रखने की, जिस प्रकार डॉक्टर की हत्या कर दी गई।
सीधा फांसी पे लटकाया जाए, क्योंकि जब वो ये कांड करके देखते नहीं है तो हमें सरकार भी क्यों देखती है ये चीजें? महिलाओं की तो दिन पर दिन ये वारदातें बढ़ती जा रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। निर्भया से लेकर अब तक आज भी रांची का केस देख लीजिए, अभी जो लेटेस्ट आया वहाँ पर भी यही किस्म देखने को मिला है, सामूहिक बलात्कार उनके साथ किया गया। महिलाएं आखिर कब तक डर कर रहेंगी, कब तक मोमबत्तियाँ की लौ जलती रहेंगी?
इस घटना के खिलाफ हैदराबाद में भी कल देर तक विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर के हत्या के मामले में जिन चार युवकों को अभियुक्त बनाया गया है, लोग उन्हें जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में इस घटना के बाद हालात कैसे हैं, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने संपर्क किया हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से।
कई जगहों पर बड़े बड़े अवरोध प्रदर्शन हुए हैं, लोग काफी नाराज हैं, दुखी हैं और गुस्से में हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन खुद शमशाबाद में हुआ है। शमशाबाद वो जगह है जहाँ पे हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और उसी से निकट ये घटना घटी थी। तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में इन लोगों को रखा गया था, इन चारों लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को वहां पर कड़े सुरक्षा प्रबंध करने पड़े थे क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, खासतौर से युवाओं और छात्र छात्राओं की, कि उन्हें रोक कर रखना मुश्किल हो रहा था पुलिस को। और इन चारों की जान बचाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लोगों को वहां से हटाना पड़ा। इन चारों को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनको कड़े सुरक्षा के बीच चरलापल्ली सेंट्रल जेल में रखा गया है।
क्या कोई राजनीतिक बयान इस पूरे मामले पर अभी तक क्या आए हैं?
देखिए, सरकार की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना घटना है, अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, उसमें ये मुकदमा चलेगा और कोशिश की जाएगी कड़ी से कड़ी दंड इन लोगों को मिले। और विपक्ष तो वो जाहिर से बात है कि अपना काम करेगा, लेकिन सरकार पर ये आलोचना बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो निर्भय फंड है तमाम राज्यों को वो अलॉट किया गया था, उसमें से लगता है कि केवल 3.5% फंड ही तेलंगाना राज्य ने इस्तेमाल किया है। तो हालांकि वो पैसा महिलाओं की सुरक्षा के प्रबंध को कड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ये एक बड़ी अहम आलोचना हुई है।
एक चीज और है जिसकी चर्चा काफी हो रही है कि पुलिस ने काफी जल्दी अभियुक्त ने हिरासत में ले लिया चार युवकों को जो पकड़ा गया है। क्या पुलिस की तरफ से कोई बात ये बताई गई है कि उन्होंने किस तरीके से इन युवकों को पकड़ा, क्या किस तरह से उन्हें शक हुआ कि ये इसमें शामिल हो सकते हैं?
जी, इसकी 2-3 बड़ी मुख्य बातें हैं जिसने पुलिस को मदद दी है जल्दी से लोगों को पकड़ने में। एक तो ये कि जिस जगह उस महिला ने अपनी स्कूटर रखी थी उसे थोड़ी ही दूर पे एक टोल प्लाजा है, तो वहां के कैमरे की सहायता से ये देखा गया कि एक लारी वहां पे खड़ी थी और वो लारी के पीछे ही वो महिला और वो चार लोग थे जिन्होंने बाद में इनको इस अपराध का निशाना बनाया, तो उसका चित्र काम आया है। इसके अलावा बाद में ये भी देखा गया कि इन चारों के जो फोन थे वो फोन को भी इन्होंने ट्रेस किया कि कहाँ कहाँ से ये फोन किए गए थे, वो सारी जगहों पे जहाँ पे अपराध हुए हैं, क्योंकि वहां से उसे आपका अपहरण किया गया और फिर उसको किसी और जगह पे वीरान जगह पर ले जाके उसे बलात्कार का निशाना बनाया गया और फिर 27 किलोमीटर दूर ले जाके एक चट्टानपल्ली एक जगह है वहां पे उसके शव को जलाया गया। तो पुलिस का कहना है कि इन सारे जगहों के फोन कॉल के रिकॉर्ड्स को उन्होंने छानबीन की तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये चारों व्यक्ति जिस समय एक दुर्घटना घटी है उस समय ये चारों व्यक्ति उन तीनों स्थानों पर थे।
जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक। और अब आगे बढ़ें, उससे पहले भूमिका राय से जानते हैं कि आज दिल्ली में छपने वाले अखबारों में किन खबरों को जगह मिली है।
मानसी, जैसा अभी हम अपनी एक रिपोर्ट में सुना भी रहे थे कि हैदराबाद में जो महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है, जिस तरीके से उनके साथ पहले कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और फिर उन्हें जलाकर मार दिया गया, उसी से जुड़ी खबर आज लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पे है। मेरे हाथ में दैनिक हिंदुस्तान है और उसने पहली खबर दी है, आक्रोश, हैवानियत के खिलाफ देश भर में उबाल। और ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ एक जगह हैदराबाद में नहीं, दिल्ली, हैदराबाद, रांची, संभल, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने और ख़ास तौर पर युवाओं ने प्रदर्शन किया है। और युवाओं की बात करूं तो कल संसद के सामने एक 20 साल की लड़की एक तख्ती लेकर बैठी थी और उस पर लिखा था, मैं अपने देश में ही सुरक्षित क्यों नहीं हो सकती। और ये फ़ोटो जो है उनकी वो वायरल हुई, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में हिरासत से छोड़ भी दिया गया। लेकिन उसके बाद स्वाति मालीवाल ने भी उस पर प्रतिक्रिया जताई कि इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा कल झारखंड में चुनाव हुए थे विधानसभा के 13 सीटों के लिए, जिसमें करीब 65% मतदान हुआ है। और सरकारी स्कूलों में, सरकारी भूमि में बने निजी स्कूलों की फीस पर सख्ती जताई है उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, और कहा है कि बिना कोर्ट की इजाज़त के फीस को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अभी नर्सरी एडमिशन और ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं, तो इस लिहाज से ये एक अहम खबर है।
एक खबर दी हिंदू में भी है, इस खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड बनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं, और ये जानकारी दी है पोस्टल विभाग ने। उनका कहना है कि गृह मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि असम की तरह पूरे भारत में NRC लागू होगा, उस कारण शायद लोग डरे हुए हैं।
जी, और एक खबर है हॉलीवुड और अमेजन के वर्षावनों से जुड़ी हुई, जिसमें हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो पे ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि अमेजन के जंगलों में जो अगस्त महीने में आग लगी उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। ये लेकिन ये एक आरोप है जिसकी कोई पुष्टि हम तो फिलहाल नहीं करते हैं। और सरकार के 180 दिन पूरे होने पर मोदी ने गिनाई उपलब्धियाँ, ये हेडिंग लगाई है अखबार ने। इसके अलावा एक छोटी सी खबर है जो कि बताते चलो ये कानून और जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए खास तौर पे फ़ायदेमंद होगी। नाबालिग रहते हुए अगर अपराध हुआ है तो भी सरकारी नौकरी में कोई बाधा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर नाबालिग रहते हुए आपसे कोई अपराध हुआ है और अपराध की पुष्टि भी हो जाती है, बावजूद उसके आप सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकार के 180 दिन पूरे हुए, आपने कहा अभी, उसी से जुड़ा एक लेख है नज़रिया मेघनाथ देसाई का इंडियन एक्सप्रेस में। वो लिखते हैं कि मोदी पहली सरकार जो थी वो उसका फोकस स्वच्छ भारत और ग्रामीण इलाकों में घर, महिलाओं का स्वास्थ्य था, लेकिन जो दूसरी सरकार है उसका फोकस शायद आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और NRC जैसे मुद्दे हैं। और अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते क्या था। बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने जो तैयार किया है उर्दू प्रेस, उसे आप कृपया सुनाइए।
जी, पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते सेना प्रमुख के सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा, छात्रों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जैसे जो मुद्दे रहे वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान की सरकार की तरफ से मिले 3 महीने के सेवा विस्तार की। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इमरान खान की सरकार ने अगस्त 2019 में ही उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार पर रोक लगा दी और सरकार से दस्तावेज पेश करने को कहा कि किन हालात में उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान की सरकार आमने सामने है और किसी को नहीं मालूम कि आखिरकार होगा क्या, लेकिन गुरुवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इमरान खान जरूर राहत महसूस की उन्होंने और सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने की इजाजत दे दी, हालांकि 3 साल नहीं, कुछ महीने। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान सरकार चाहे तो मौजूदा कानून में संशोधन कर सेना प्रमुख के कार्यकाल को और बढ़ा सकती है। अखबार दुनिया के अनुसार अदालत के फैसले पर इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार, संसद और लोकतंत्र की जीत है। इमरान खान ने अपने विरोधियों को निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माफिया को मायूसी और देश की संस्थानों को एक दूसरे से लड़ने की इच्छा रखने वालों की हार हुई है। सारे अखबारों ने संकट के टल जाने पर संपादकीय भी लिखा है। एक महत्वपूर्ण फैसले में पाकिस्तान की संसदीय कमेटी ने सिफारिश की है कि उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए नामांकित लोगों को संसदीय कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए पेश होना होगा। अखबार एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और लिखा है कि एक सुर्खी और सुना दूं इसी खबर से जुड़ी हुई। अखबार दुनिया ने सुर्खी लगाई है, नियुक्ति से पहले जजों के इंटरव्यू। तो ये और भारत का मुद्दा तो बेशक पाकिस्तानी अखबारों में है।
जी धन्यवाद भूमिका राय। और अब सुनते हैं बीबीसी न्यूज मेकर्स, जिसमें आज बात रवि कुमार की, जो खुद को कहते हैं नास्तिक और इसके मायने बताते हैं इंसान और इंसानियत से प्यार करने वाला।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में मैं ज्योतिका आपका स्वागत करती हूँ। ऊपर वाला है या नहीं, ये अपने में एक अलग ही डिबेट है, लेकिन आज बीबीसी न्यूज मेकर्स में मेरे गेस्ट हरियाणा के टोहना में रहने वाले रवि कुमार ने क्या किया है अलग, खुद सुनिए।
जी मैम, मेरा नाम रवि कुमार एचिस्ट है, रवि कुमार नास्तिक, रवि नास्तिक बोलते हैं। मैं हरियाणा में टोहाना का रहने वाला हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मैम ये हमारा जो शहर है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के पास ही पड़ता है मैम, और लोग मुझे नास्तिक के नाम से ही पहचानते हैं। और मैं इंसानियत को पहले मानता हूँ, बाद में धर्म जाति सब कुछ, पहले हम इंसान है उसके बाद है जो भी है।
इनका पूरा नाम है रवि कुमार नास्तिक, जो ना ही धर्म में मानते हैं और ना ही जाति में।
ये कहानी मैम मेरे को याद है, जब मैं 6-7 साल करीब था, वहाँ से मेरे दादाजी होते थे, वो बोलते थे कि हमारे साथ भगवान है, अल्लाह है, जो भी गॉड होता है, उनकी प्रार्थना करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं सोचने लग गया कि ये देवी देवता क्या चीज होती है, हमें हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो वहाँ से मैं स्ट्रगल करना भी शुरू किया था कि हाँ हमारी इच्छा कुछ पूरी होगी इन देवी देवताओं से। जैसे अब इंसान मरते भी हैं ये भी पता चला, ऊंच नीच का पता चला। मैं देख रहा था इंसान तो है ही नहीं कोई, पहले तो सच्चाई है कि इस दुनिया में अगर कोई भी चीज पावरफुल है, सबसे पावरफुल इंसान है।
2012 की ओ माई गॉड फिल्म में परेश रावल भी नास्तिक बने थे, जो भूकंप में अपनी दुकान नष्ट होने के बाद भगवान पर ही मुकदमा कर देते हैं। हंसी मजाक का प्लॉट लिए इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। तो आखिर रवि कुमार नास्तिक ने अपनी जिंदगी में कोर्ट का दरवाजा कब खटखटाया?
मैंने फिर मैम कम से कम 13-14 साल पहले डिसाइड किया था कुछ मैं कोर्ट के द्वारा कुछ करूंगा लीगली तौर पर। अतिष्ठ नास्तिक तो बहुत है मैम, लेकिन नास्तिकता मतलब एक सच्चाई है, दूरदर्शिता है, जो दूसरों को बराबर का दर्जा दे। ये भगवान को नकारना नहीं होता, मेन इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं हम, यानी कि इंसानियत को मानते हैं पहले।
तो क्या घर वालों ने या कभी आसपास वालों ने रोका टोका नहीं?
मैंने नो कास्ट नो रिलीजन के लिए भी अप्लाई किया था, नो वोट के लिए। तो ये यहाँ पे जाने के बाद मेरे को बहुत सी दिक्कतें आई, घर वाले भी बोल रहे थे कि आप ये काम मत करो, आप अपना अलग रह सकते हो, फिर ये काम कर रहे हो। तो बाहर से ताने वगैरह मिलते थे रिश्तेदारों के, वो के डैडी को भी मिलते थे ताने। तो मैंने कहा मैं तो करूँगा जो मेरे को करना है, चाहे आप कुछ भी करो। मेरे डैडी भी और मेरे भाई भी सारे नाराज थे, आस पड़ोस के और रिश्तेदार सभी। एक बार डैडी तो छोड़ के जा रहे थे घर, बस मरने के लिए जा रहे थे। तो फिर मैंने भी उनको कुछ बताया था, तो जागरूक तो मैंने उनको कर दिया था। तो इसके बाद फिर वो वापिस आ गए थे वो।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में जाते जाते क्या हरियाणा के रवि कुमार नास्तिक अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ जी, मैं तो उनको यही बोल रहा हूँ कि सबके लिए हवा पानी और खाना पीना मौत समान है, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है, विचार शुद्ध होने चाहिए। लेकिन इंसान से बड़ी कोई पावर नहीं है इस धरती पर, वो ही इस धरती को बचा सकता है और विनाश कर सकता है। धर्म तो विनाश कर ही रहा है मैम, एक दूसरे को देख के कट्टर हो गए हैं धर्म बिल्कुल।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में मैं रवि कुमार नास्तिक के साथ लेना चाहूंगी अब आपसे इजाजत, नमस्कार।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
पूर्वी जर्मनी में सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कोयले की कई खुली खदानों पर घंटों तक कब्जा करके रखा। उनकी मांग थी कि कोयले की इन खदानों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। ईसाइयों के ईश्वर ईसा मसीह से संबंधित एक पवित्र लकड़ी को 1000 साल बाद रोम से बेतलहम लाया गया है। इस लकड़ी के टुकड़े के संबंध में ये मशहूर है कि ये ईसा मसीह के चरवाहों के समूह से संबंधित है। नामीबिया के निर्वाचन आयोग का कहना है कि राष्ट्रपति हेज गिंगोब आगामी कार्यकाल के लिए भी चुन लिए गए हैं। गिंगोब ने सोशल मीडिया के माध्यम से नामीबिया के लोगों को धन्यवाद कहा। हॉलैंड के शहर द हेग के डिपार्टमेंटल स्टोर में चाकू से हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। शुक्रवार को हुए इस हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम को। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।